ओम शांति। गुण संपन्न ग्रुप में राजू भाई आपका स्वागत है। राजू भाई को देख करके एक विचार आता है कि जिन्होंने लौकिक दुनिया की कोई स्टडी इतनी नहीं की है, लेकिन भगवान के महावाक्य जिन्होंने अपने जीवन में धारणा के रूप में उतारा है, न सिर्फ मुख बोलता है लेकिन उनका जीवन भी एक खुली किताब है, और ज्ञान रत्न का जो संग्रह है न सिर्फ कंप्यूटर में है लेकिन उनके ब्रेन के हार्ड डिस्क में भी है। तो राजू भाई को यज्ञ में एक अलौकिक सेवा मिली हुई है, जिनका बखूबी भाई साहब ने बहुत ही निर्माणता से वो सेवा को अभी तक भी जारी रखा है शुरू से लेकर के। तो आज भाई साहब का विषय है धैर्यता एवं सहनशीलता, तो उसका प्रैक्टिकल अनुभव बातें हमें सुनाएंगे राजू भाई।
ओम शांति। बहुत सुंदर अलौकिक भट्टी कर रहे हैं आप सभी। विशेषता संपन्न गुण संपन्न भट्टी जो हर आत्मा को गुणवान बना देती है। हम सबका लक्ष्य यही है, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, ये हमारी पढ़ाई का लक्ष्य है। और उस पढ़ाई में पहला ही सर्वगुण आते हैं। तो ये गुण संपन्न योग तपस्या जो आप सब कर रहे हैं, एक गुण की धारणा अनेक गुण अपने आप ले आती है। जैसे एक अवगुण अगर आता है, एक कोई विकार प्रवेश होता है, तो उसके पीछे सभी विकारों की प्रवेशता हो जाती है। ऐसे ही अगर एक कोई गुण हम अच्छी तरह से धारण कर लेते हैं तो बाकी सब गुण अपने आप आने लगते हैं। एक है ईश्वरीय गुण और दूसरे हैं दैवी गुण। दैवी गुणों का गीत तो हम सब सुन रहे थे, दैवी गुणों का बहुत अच्छा गुलदस्ता जिसमें सब गुणों का राजा किसको कहा गीत में शब्द था, संतुष्टता, संतोष धन, संतुष्टता का गुण सब गुणों का राजा है। तो ऐसे एक गुण आता है तो उसके साथ सहनशीलता, सरलता, नम्रता, मधुरता, कई गुण अपने आप आ जाते हैं। तो आज ये जो विषय रखा है धैर्यता और सहनशीलता, मैं समझता हूँ हमारे इस संगठन के लिए, यज्ञ वत्सों के लिए, समर्पित भाई बहनों के लिए, संगठन में चलने के लिए इन दोनों गुणों की बहुत बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यकता है। नहीं तो हम अपने डिपार्टमेंट में अपने साथियों के साथ भी एडजस्ट होकर के चल नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले कहावत है, कहा जाता है, जहाँ रहना है वहाँ सहना है, जहाँ रहना है वहाँ सहना ही है। सहन तो करना ही पड़ता है, कोई कहे मुझे कोई सहन नहीं करना पड़ता, अगर आप एक डिपार्टमेंट में दो चार छः साथी साथ में सेवाएं कर रहे हैं तो एक के विचार कुछ हैं, दूसरे के कुछ हैं, और विचारों में मिलाना, उनको सम्मान दे करके चलना, कई बार उनकी बातों को सहन करना पड़ता है, समाना भी पड़ता है, तब उनके साथ हम मिल करके सेवाओं में सफल हो सकते हैं। मुझे जब ये सहनशीलता की बात आती है तो हम कहते हैं जब भी कोई ऊंचा लक्ष्य लिया जाता है, जब कोई ऊंचाई की तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। हमारी दादी जी को सामने रख करके हम कुछ बातें आपको बताते हैं। दादी प्रकाश मणि जी जो हमारी इस विद्यालय की मुखिया बनी और बहुत सुचारू रूप से यज्ञ को चलाया। दादी जी कितना सहन किया होगा, ब्रह्मा बाबा तो अपनी कहानी सुनाते हैं लेकिन दादियों ने कभी वर्णन नहीं किया। ब्रह्मा बाबा की मुरली में कई बार आता है कि वाट वेंदे वामन पातो, ये सब दाता सिंधी का, कि मैं रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, कहाँ इतना मान सम्मान इज्जत प्यार सब देते थे और शिव बाबा ने प्रवेश किया और गालियों की बौछार होने लगी, सहन करना पड़ा। क्योंकि बाबा कहते थे ये तो बच्चे निर्दोष हैं, इनको तो पता ही नहीं है कौन करा रहा है, तो ये जरूर कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, और बोलना उल्टा सीधा इतना जो शायद इतनी बड़ी उम्र में 60 साल की उम्र के बाद बाबा ने ऐसे कलंक सहन किए, कलंक ही लगे। कन्याओं माताओं की संस्था के बीच में बाबा को क्या नहीं सुनना पड़ा होगा, कितना सहन किया होगा, आप सोच सकते हो। अखबारों में ही निकल गया था कि अभी तक इनको 400 मिल गई हैं, अभी 16108 चाहिए। अब तो पूरी नहीं, ज्यादा हो गई अभी तो बहुत हो गई, अभी तो 40,000 की लगभग हैं हमारी बहनें। लेकिन उस समय की बात है कि अखबारों में भी ये बात आई, कहाँ इतनी परम पवित्र शिव बाबा की आत्मा और कहाँ ब्रह्मा बाबा इतना रायल संस्कार वाले, उनके ऊपर भी कलंक लगे। कई बातें उन्होंने सहन की, परिवार से भी सहन की, लौकिक से भी सहन की, अलौकिक से भी सहन की, समाज में भी बहुत कुछ सहन सुनना पड़ा, सहन करना पड़ा। लेकिन एक निश्चय का बल था कि ये कराने वाला स्वयं बाबा है, वो करा रहा है, वो कुछ नया कराना चाहता है, इसलिए कोई बात नहीं, सुन लो, सहन कर लो, संभालो। कभी वर्णन नहीं किया बाबा ने ऐसे। और जब सेवाओं के क्षेत्र में उतरे तो आप सब समझते हो गालियों की क्या बौछार हुई। बाबा कहते थे अभी ये लोग गालियां दे रहे हैं ना, जितनी गालियां देते हैं उतना गिन गिन करके फूल चढ़ाएंगे। बच्चे कोई बात नहीं, सुनते रहो, सुनते रहो, सहन करो। नहीं तो उस समय शायद आप लोगों ने सुना होगा, एक बार एक अखबार था विश्वामित्र अखबार, कलकत्ता से निकलता था, और उस अखबार में बाबा के लिए बहुत कुछ उल्टा सीधा लिख दिया अखबार वालों ने, कि बाबा एक साइकिल पंचर की दुकान संभालता था, फिर ऐसा करता था, ऐसा करता था, जवाहरी था ही नहीं। तो परदादी हमारी कलकत्ता में थी, वो जब देखा अखबार तो उनको तो आया, बस अब इसके ऊपर केस कर दूं मैं, मान हानि का केस कर दूं। लेकिन बाबा से बिना पूछे तो बच्चे कुछ करते नहीं थे। तो जब बाबा के पास समाचार आया, बाबा से पूछा, तो बाबा ने कहा बच्ची उस अखबार का नाम क्या है। बोला उस अखबार का नाम है विश्वामित्र। कहता बहुत अच्छा नाम है बच्ची, उसको लिखो, तुम तो विश्वामित्र अखबार निकालते हो, हमारे तो परम मित्र हो, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। तो उस निंदक को भी बाबा ने मित्र बना करके देखा, और उसके बाद वो इतना परिवर्तन हो गया, जो सॉरी भी किया और फिर अच्छी अच्छी बातें भी छापना शुरू कर दिया। तो बाबा ने कभी भी इन बातों को अपने चित्त पर नहीं रखा, बहुत निर्माणता से सरलता से सहन कर लिया, और सहन कर लिया, सहनशाह बन गया ना। आज देखो कितना साकार में ब्रह्मा बाबा को लोग, वैसे तो कहता है मैं पूजाता नहीं हूँ, संगम पर ब्राह्मणों की पूजा नहीं हो सकती है, लेकिन घर घर के अंदर बाबा का फोटो है, और जहां भी कोने कोने में आप जाओ ब्रह्मा बाबा को सभी बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जितना अनादर किया था उतना उससे कई गुना आदर मिल रहा है। तो ब्रह्मा बाबा ने अपनी प्रैक्टिकल जीवन ऐसी सरल सहनशील बनाई जो सबके आगे एक उदाहरण रखा है। दादी जी का एक शब्द मैं आपको सुनाता हूँ। कहती थी, भाई मैं तो सदा पेपर हाल में रहती हूँ, सदा पेपर हाल में रहती हूँ। वो पेपर तो स्टूडेंट 3 महीना 6 महीना साल 9 मास में देता है, लेकिन मैं तो यहाँ से बाहर निकलती हूँ और पेपर शुरू हो जाते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, बहुत सारी बातें आती हैं। क्योंकि इतना बड़ा परिवार है, हर एक के संस्कार अपने हैं, हर एक की बातें अपनी, हर एक की इच्छाएं अपनी हैं। जिसकी भी नहीं सुनते हैं वो सब पेपर बन के आ जाते हैं। कितना बोलते हैं, शायद आप लोगों को नहीं मालूम हो, क्योंकि मैं तो बार बार जाता था। एक दो बार मैं ऐसा गया जो कोई दादी से झगड़ रहा था अंदर बैठे हुए, बहुत जोर बोल रहा था, जोर जोर। तो मेरे को आया कि मैं चला जाऊं अंदर, लेकिन मेरे को नियम मर्यादाएं मालूम है, भाई जब कोई बात कर रहा है तो नहीं जाना चाहिए, कर लेने दो उसको। तो मैं बाहर बैठा रहा, लेकिन सुनता रहा क्या कहता है, सुना। जब वो चला गया, वो भाई चला गया, जब दादी से गर्म हो करके उल्टा सीधा बोल करके, तो मैं अंदर गया दादी के पास। लेकिन दादी के अंदर इतनी शक्ति थी सहन करने की, समाने की, जो मैंने पूछने की कोशिश की, दादी क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं, छोड़ो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, ये तो होता रहता है, ये तो बड़ी बात थोड़ी, तो संगठन है, परिवार है, हर एक की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी बातें होती हैं। उस बात को उन्होंने रिवाइज तक भी नहीं किया। तो इतना सहन करना, इतना समा लेना, इतना सरलता से उस बात को समाप्त कर देना, इससे दादी दादी बनी। कभी भी किसी के आगे उन्होंने वर्णन नहीं किया होगा कि मेरे साथ ऐसा इसने व्यवहार किया, ऐसा बोल के गया, क्योंकि सब बड़ा संगठन है, छोटे भी बोलते हैं तो बड़े भी बोल देते हैं। और ब्रह्मा बाबा की बात तो दादी को सीट जो मिली ना, इस सीट के बारे में भी बहुत लोगों ने बोला। ये आपको कहानी नहीं मालूम होगी, क्योंकि दादी तो बॉम्बे में रहती थी और दीदी मनमोहिनी साथ में रहती थी बाबा के। दीदी को बाबा ने सेवा पर भेज दिया। बाबा को सब मालूम है कि अव्यक्त होना है, शरीर छोड़ना है, पता सब था बाबा को। लेकिन बड़ी युक्ति से दीदी को बाहर भेज करके दादी आई थी पार्टी लेकर के, और दादी को रोक लिया, पार्टी को भिजवा दिया। और अंत समय में, शरीर छोड़ने के समय, दादी जी के हाथ में हाथ दिया, शक्ति दे दी। बहुत बड़ी बात थी, वो ट्रांसफर किया अपनी गद्दी को जैसे, और गद्दी ट्रांसफर की और सारा कार्य संभाला उस समय 3 दिन तक, जो बहुत बड़ा पेपर था, वो बहुत शक्ति स्वरूप होकर के संभाला उस पेपर को। उसके बाद जब बाबा ने दीदी और दादी के ऊपर कलश रखा, आप सब समझ सकते हो, बाबा की लौकिक में बहू ब्रजिंद्रा दादी, इतनी समझदार, इतनी बुद्धिमान, जिसने पहला साक्षात्कार से बाबा के अवतरण का किया था, वो सामने बैठी है। बाबा की लौकिक बेटी निर्मल शांता दादी सामने बैठी हुई है। और वैसे भी लौकिक में कोई बड़ा जाता है तो अपने परिवार वालों को पहले याद करता है, लेकिन यहाँ तो बड़ा शिव बाबा था, ब्रह्मा बाबा तो था ही नहीं। तो शिव बाबा ने जब दीदी और दादी के सिर पर कलश रखा और कहा ये दोनों मिलकर संभालेंगी, तो वातावरण में बहुत हलचल हुई, बहुत दिन तक हलचल चली। लेकिन बाबा ने अव्यक्त रूप में बहुत परिवार को संभाला, बहुत अच्छी तरह से सबकी पालना की। और दीदी दादी ने इतना निर्माणता के साथ सबको सम्मान दिया, सुना सबकी, सम्मान दिया, उनको बुलाया, उनको आगे रखा, हर बात में आगे रखा, सबको सुना, ये हमसे बड़े हैं, यही समझ करके चली। ये कभी भी भान नहीं आया कि मैं बड़ी हूं। बड़प्पन आ जाता तो टकराव पैदा हो जाता, बाबा बड़ा बैठा है, बाबा ने कहा है, मैं उनकी सेवा कर रही हूं। ऐसे करके आज यज्ञ को कहां से कहां पहुंचाया। तो दादी कहती थी, मुझे तो कितना सहन करना पड़ा, कितना सुनना पड़ा, क्या मैं बताऊं आपको। लेकिन आज उनकी कितनी महिमा है, कितने गुणगान हो रहे हैं, सब कितना प्यार से दादी को याद करते हैं कि दादी ने ये किया, ये किया, ये किया। तो सहन करके तो सहनशाह बन गए। और वैसे भी देखो, हमारे चित्रों में एक चित्र बनाते हैं कि अगर पूज्य बनना है तो सहन करना पड़ेगा, सहन शक्ति के लिए एक चित्र बनाते हैं जिसमें देवियों को जब बनाते हैं मूर्तिकार देवी की या देवता की कोई मूर्ति बनाते हैं तो उस पर छेनी हथौड़ी चलाते हैं पत्थर के ऊपर, तो छेनी हथौड़ी सहन करते करते वो देवी बनी, देवता बन गया, पत्थर को कौन पूजेगा, लेकिन जब उस पर छेनियां पड़ी हथौड़ियां पड़ी तो पूजनीय लायक बन गई। शालिग्राम की पूजा भी ऐसे नहीं होती, शालिग्राम को ऐसे नहीं उठा करके ले आते हैं, पता कैसे बनते हैं शालिग्राम। मैं एक बार एक स्थान पर गया था, बोला यहां से ही शालिग्राम सारे विश्व में जाते हैं। मालूम है प्रवीणा कहां? मॉरिशियस में। तो मॉरिशियस में जब मैं गया तो एक सागर की लहरें जो थी ना, उस लहरों में हजारों पत्थर बड़े बड़े लुढ़कते थे पानी के साथ तेज लहरों के, और ऐसे ऊपर तक ले जाते थे और फिर ऊपर से सब लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ जाते थे। तो जो पत्थर थे बड़े बड़े ऐसे क्वालिटी के पत्थर होंगे जो पानी के साथ 25 फुट 50 फुट ऊपर आते थे और फिर नीचे जाते थे, फिर लहरों के साथ ऊपर आते थे फिर नीचे जाते थे, तो घिसते 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 वो इतने चिकने हो गए तो शालिग्राम बन गए। आपको शालिग्राम बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? घिसना पड़ेगा, संगठन में घिसना पड़ेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ धक्का मारेगा, कोई कोई बात करेगा, जितना आप आगे बढ़ोगे उतना खींचने वाले पीछे से खींच लेंगे, जरा भी कोई आगे बढ़ने लगेगा ना खींचने वाले हजार तैयार हो जाते। हमारे आगे तो बहुत सारे ऐसे पेपर आए, लेकिन एक बल एक भरोसा, एक ध्यान रखा था कि मुझे केवल दादियों की श्रीमत दादियों को मानना है, बाकी जो कहेगा कहने दो, बड़ों ने कहा है मुझे हटना नहीं है। कई कलंक लगे, कई बातें आई, बहुत कुछ सहन करना पड़ा, यहां तक पहुंचाने में कोई कम मेहनत नहीं लगी जो बाबा ने यहां पहुंचाया है इस स्थान तक, लेकिन उस बात को कभी भी परवाह नहीं की, कभी योग तोड़ा नहीं, कभी मर्यादाएं उल्लंघन नहीं की, और कभी भी जोश में आकर के जवाब नहीं दिया, गुस्से में आकर के ये मेरे को ऐसा बोलता है, क्योंकि संगठन जब आगे बढ़ता है और संगठन में अगर हम एक ग्रुप में, मान लो आप चार लोग हैं साथ में, आपकी बुद्धि अच्छी है, आपकी धारणाएं अच्छी हैं, आप अच्छे नियम मर्यादा में चलते हैं, तो बड़े लोग जरूर आपको पूछेंगे, बात करेंगे, आपको काम देंगे। ऐसे ही दीदी दादी ने एक बार क्या किया, मुरली डिपार्टमेंट की बात थी, अचानक कोई कारण से कुछ हुआ तो दादी ने कहा तुम डिपार्टमेंट संभाल सकता है? कहा हाँ जी। कहा ठीक है, चाबी मेरे को पकड़ा दिया, और जो भाई करने वाला था वो एकदम मेरे से जल गया, कोई सेल्वेशन के लिए ऐसी बात हुई थी, मुझे सेल्वेशन चाहिए नहीं तो मैं ये काम नहीं करेंगे, और वो सेल्वेशन क्या था, यज्ञ गरीबी में था, इतना तो कुछ पैसा था नहीं, आज अगर हम एक टाइपराइटर मांगते थे तो भी हमें कहती थी दादी भाई अगर एक से चल सकता तो चला लो ना, दो क्यों रखना तीन क्यों रखना। तो ऐसे ही अगर मान लो कोई सेल्वेशन नहीं मिली और आप गर्म हो गए कि मैं डिपार्टमेंट छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं काम रोक दूंगा, तो बड़े लोगों को सहन तो करना पड़ेगा, लेकिन वो बड़े सरलता से कहते थे अगर तू नहीं करेगा कोई बाबा का काम थोड़ी रुकेगा। एक बार क्या हुआ, एक अनाज डिपार्टमेंट का भाई अनाज संभालता था, रात के समय एक ट्रक आ गया गेहूं का, अब वो भाई कहे मैं रात को नहीं उतारूंगा, जब आता दादी जब आता है, हमको ही कहती है, मजदूर तो थे नहीं, उतारना तो पड़ेगा, ट्रक आया है गेहूं उतारना है, मदद सब करते लेकिन डिपार्टमेंट इंचार्ज को तो आगे आना पड़ेगा ना। अब वो चिढ़ गया, गुस्से में आया और दादी के सामने चाबी ऐसे फेंक दिया, मेरे से नहीं होगा, जब आइए जब रात बिरात ट्रक आ जाता है मैं नहीं कर सकता, गुस्से में आ गए एकदम। दादी ऐसे देखती, मैं बैठा था साथ में दादी के, दादी ऐसे देखती कुछ नहीं बोली, ठीक है दादी ने कहा ठीक है, एक बार भी उसको नहीं बोला कि तुमको करना है जा तुम, और एक भाई जो करने वाला था उसको बुलाया प्यार से, कहा तुम करेंगे? हाँ दादी हाँ दादी, दे दिया चाबी, और उस दिन से लेकर के वो क्या से क्या भाई बन गया, और वो जो जैसा था वैसे के वैसे वही है, श्रापित हो गया, श्रापित हो गया, कुछ नहीं उसको कहा। और यज्ञ के अंदर सबसे बड़ी सजा किसी से सेवा छुड़ा देना, अगर सेवा ही नहीं है तो क्या करोगे यज्ञ में रह करके? बोझ चढ़ेगा। आज यज्ञ में हमारी इतनी पालना हो रही है, इतने ठाट बाट से हमको बाबा ने रखा है, अगर हमारे पर जितनी पालना हो रही, जितना हमारे पर खर्चा हो रहा उतना हम नहीं करेंगे रिटर्न में, तो बोझ चढ़ेगा। और यज्ञ का बोझ जिसके ऊपर चढ़ता उसका योग लगेगा, उसका जीवन संतुष्ट रहेगा, खुशी होगी? कभी नहीं हो सकती। इसलिए कभी भी कोई सेवाओं में चिड़चिड़े बन करके, जोश में आकर के, आवेश में आकर के, बहुत सहन करना पड़ेगा। सरल करो, सहन करो, और सहन करके हाँ जी कर लो, बहुत सारे मददगार आपको मिल जाएंगे। कोई भी सेवा दिया, बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं हम लोगों को मिली हैं, अचानक दी है दादियों ने, ये करोगे? हाँ दादी। ये नहीं कहा मेरे पास इतनी सेवाएं हैं दादी, ये कैसे होगा? कर ले, हो जाएगा दादी, कह रही हो जाएगा। और इसी के कारण उनकी दिल जीत लिया, और वो समझती थी इसके पास इतने काम है। आपको पता होगा मेरी डिपार्टमेंट के अंदर जिन्होंने भी बड़ों ने शरीर छोड़ा ना, विश्व रतन दादा ने शरीर छोड़ा, उनके सारे मनी ऑर्डर का लिखना, जवाब देना, वो मेरी डिपार्टमेंट में आ गया। लच्छू दादी ने शरीर छोड़ा, कई चीजें वो करती थी, पर्सनल पत्र देना, ये करना, वो सारी जवाबदारी आ गई, बहुत सारे काम आते गए। हम भाइयों को बोलते हैं तुम चुपचाप ले लो, बाबा अपने आप मदद करेगा, हो जाएगा, कर लेंगे हम सब मिल करके। कुछ तो त्याग करना पड़ेगा, कुछ सहन करना पड़ेगा, सेवाएं मिलेंगी। हम चिड़चिड़े होकर के अगर सेवा करेंगे तो दुआएं तो नहीं मिलेंगी ना। मैंने इस चिड़चिड़ेपन को समाप्त करने के लिए बहुत मेहनत की अपने ऊपर। बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन आता है जब कोई टाइम बे टाइम आकर के काम लेता है आकर के और बोल देता है। जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं है वो तो या तो रफ डब बोल जाएगा या तो फिर चिड़चिड़े होकर के काम कर देगा, लेकिन कहते हैं दूध भी दिया ऊपर मैंगनी भी डाल दी, दूध भी निकालो और ऊपर से कोई डाल दिया जाए गंदगी, तो क्या होगा? तो काम कई कर लेते हैं लेकिन चिड़चिड़े होकर के, टेंशन में आकर के, देखो मेरे से ही कराया जाता है, मैं ही करूं क्या, इतने सब रहते हैं वो नहीं करेंगे। लेकिन बाबा कहता बच्चे कुछ भी है, आपको अगर चांस मिलता है भाग्य समझ करके खुशी खुशी से कर लो। मेरा चिड़चिड़ापन बताऊं कब होता था? जब मैंने अपनी डिपार्टमेंट को पांडव भवन में विश्व रतन दादा के ऑफिस में चेंज किया, तो विश्व रतन दादा का ऑफिस गया आगे दूसरे कमरों में, और मुझे वो डिपार्टमेंट ऑफिस और कमरा साथ में मिल गया। अब साथ में कमरा होने के कारण फोटो स्टेट मशीन और साथ में कमरा, जब गहरी नींद होती थी उसी समय कोई न कोई आके कहता था भाई जी मेरी फोटो कॉपी कर दो, मेरा ये काम कर दो। मुझे इतना चिड़चिड़ापन आता था, क्या यार ये कमरा लेकर के तो मैं फंस गया, यही ऑफिस यही कमरा, दूसरे जो साथी लोग हैं वो तो कमरों में हैं, अलग अलग हैं, अब मेरे को उठ के तो करना पड़ेगा ना। तो मैं सोचता था ये तो बड़ा बंधन है, लेकिन सहन किया, ठीक है कोई बात नहीं, जवाब नहीं दिया कड़क हो करके, कोई गुस्से में आकर के नहीं किया, लेकिन मैंने उस चिड़चिड़ेपन को जीतने का प्रयास किया। चलो कोई बात नहीं, बाबा अपने आप मदद करेगा, कोई साधन निकालेगा, कोई युक्ति बना देगा, करा देता है बाबा, सब काम हो जाते हैं। तो ऐसे कई सेवाएं होती हैं जो आत्मा की सहन शक्ति से बाहर चली जाती है। इसलिए हम सबको एक ध्यान रखना चाहिए कि मुझे सहन करके सहनशाह बनना है, ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त करना है, ऊंचाई की स्थिति को प्राप्त करना है। कितनी भी बातें आ जाएं, आई हैं चली जाएंगी, नथिंग न्यू, कोई बड़ी बात नहीं है, सहन कर लो, संभालो, एडजस्ट कर लो अपने आप को। क्योंकि कई बार हम समझते हैं ये जो कह रहा है ये गलत है, मैं राइट हूं। हमारे बड़े हैं, हमारे डिपार्टमेंट इंचार्ज हैं, वो हमें जो कह रहे हैं वो बात मुझे जचती नहीं है, और हम अपनी बुद्धि चलाते हैं और वहां पर टकराव पैदा होते हैं। तीन बातें जो वर्तमान समय हमारे संगठन में बहुत नुकसान करती हैं, वो एक है अहम भाव, अहम बुद्धि का अभिमान, और अनुभव का अभिमान भी होता है। मैं इतने समय से कर रहा हूं, मैं अनुभवी हूं, मुझे पता है, बुद्धि है मेरी, मैं समझदार हूं, प्लानिंग है, कोई ने कोई राज दिया, फट से कट कर देंगे। कट कर दिया तो आप समझते हो सदा के लिए कट हो जाएगा। दादियों ने कभी भी किसी की राय को कट नहीं किया। किसी ने भी कोई राय दी, ठीक है, इस पर विचार करेंगे। जानती है ये होने वाला नहीं, हो भी नहीं सकता है, लेकिन कट कर दिया तो माना उसका जो सम्मान है, उसका अभिमान है, उसको ठेस पहुंच जाएगी, और ठेस पहुंचेगी तो आगे के लिए वो करने के लिए उसकी हिम्मत खत्म हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले हमें अपने अहम को मारना है। सीखने के लिए आए हैं, और जब तक जीना है तब तक सीखना है। हम सीख करके परफेक्ट कोई भी नहीं हो गए हैं, चाहे डिपार्टमेंट की सेवाएं हैं, चाहे हमारे आध्यात्मिक मार्ग में भी योग की स्टेजेज हैं, ज्ञान की पढ़ाई की स्टेजेज हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है और बाबा सिखा रहा है। हम सब स्टूडेंट हैं, हमें सीख करके उस योग्य बनना है। योग्यताओं का अहम जहां आ जाएगा वहां टकराव पैदा होगा, और टकराव को अगर सहन नहीं किया तो संबंध बिगड़ जाएंगे, दूरियां बढ़ जाएंगी। इसलिए हम सबको पहले अपने अहम को मारना है, गलाना है। बाबा बैठा है, बाबा करावनहार है, वो करा रहा है, मैं आत्मा निमित्त निर्माण चित्त हूं, निमित्त हूं निर्माण हूं। अपने आप कोई भी कार्य आएगा आप सहज कर लेंगे। दूसरा देखा जाता है संगठन के बीच में ईर्ष्या, बहुत ईर्ष्यालु आपस में एक दूसरे के प्रति बहुत जलते हैं। कहा जाता है दूसरे के सुख को देख करके व्यक्ति दुखी हो रहा है, खुद दुख नहीं है उसके पास, लेकिन इसका इतना अच्छा जीवन है, इसके पास ऐसा साधन है, गाड़ियां हैं, इतना आराम से रह रहा है, बस वो देख करके उसको जलता रहता है। इनको तो कोई पहचानता नहीं है, इनको तो क्या क्या ये करते हैं, कैसे हेरा फेरी करते हैं, कहाँ से पैसा ले आते हैं, बस उनको देख देख करके जलता रहता है, खुद की खुशी गायब कर देता है। हम सबको देखना चाहिए, हर आत्मा को अगर कोई प्रारब्ध प्राप्त है, संगम पर मिली हुई है, मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, कुछ तो उसने शिव बाबा के नाम पर किया है, भक्ति में भी बहुत कुछ किया होगा, इस जन्म में मान लो नहीं भी किया है, लेकिन कभी तो शिव बाबा के नाम पर किया होगा, जो शिव बाबा के घर में रह करके आराम की जिंदगी जी रहा है, रहने दो, भोग करके खत्म हो जाएगा, मैं क्यों उसे ईर्ष्या करूं। बहुत नम्रता से, सरलता से, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के यज्ञ में रहना है। ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसको ये प्राप्ति हो रही है, उसको वो हो रही है, अपने आप को डिस्टर्ब करने के सिवाय और कुछ नहीं है। अपने को डिस्टर्ब कर लो, अपनी मन की अशांति, मन की धैर्यता को खो दो। हम सब जानते हैं आजकल दुनिया के अंदर जितनी बीमारियां हो रही हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, हरी वरी करी, तीन ही बताते हैं ना, हार्ट की बीमारी हो गई, टेंशन हो गया, पैरालिस हो गया, जरूर कुछ हरी वरी किया होगा। हरी वरी समझ रहे हैं ना, सभी हिंदी इंग्लिश नहीं समझते होंगे, ये हरी माना जल्दी जल्दी जल्दी, उतावलापन, जल्दी करो, ये कर लो, ये कर लो, ये कोई भी बात आ गया, थोड़ा सा एक जगह थोड़ी सी कहीं आग की चिंगारी ऐसे दिखाई दी, एक भाई बैठा था, इतना परेशान हो गया, दौड़ा जल्दी जल्दी, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, और बेचारे को पैरालिस हो गया। हरी, अरे भाई लगी है, बुझाई जाएगी, थोड़ा धैर्यता से, शांति से। यहां कोई थोड़ी सी गलती करता है, मेरा हरी ये क्यों कर रहा है, देख लूंगा मैं, सुधार दूंगा मैं, पता नहीं सारी जवाबदारी इसी को मिली हुई है क्या, हरी क्यों कर रहे हो, सब कुछ ठीक होगा, ड्रामा ये क्यूरेट बना हुआ है। ड्रामा जब इतना कल्याणकारी है और बनाने वाला क्रिएटर और डायरेक्टर कौन है, उसको हम कभी देख नहीं रहे हैं। वो कहता है मैंने जब रचना रची है, कई बार कहता मैं नहीं रचता हूं, लेकिन क्रिएटर डायरेक्टर प्रिंसिपल एक्टर कौन, बाबा ही है ना। जब वो है और उसके क्रिएशन में, उसकी रचना के अंदर, ड्रामा के अंदर अगर हम कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और हम अधैर्य हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, तो बाबा कहता है इसने ड्रामा को यथार्थ समझा ही नहीं है, बहुत एक्यूरेट चल रहा है, हर दृश्य में कल्याण समाया हुआ है, बुराई में भी अच्छाई समाई हुई है। अब इस बात को कोई समझे बुराई में अच्छाई कैसे है, आ जाएगा जोश। लेकिन बाबा कहता है कुछ तुमको सिखा के जा रही है, अनुभवी बना करके जा रही है। एक बार एक सेंटर में, ये जब उपद्रव हुए थे ना, भारत के अंदर बीच बीच में होते हैं, तो एक बार बहुत उपद्रव हुआ। हमारा सेंटर चौथी मंजिल पर बहुत अच्छा आश्रम बना था, वहां पर बहुत सुंदर म्यूजियम था और नीचे सरदारों की दुकान थी। सरदारों को मारने लगे लोग, भगाने लगे, जब इंदिरा गांधी जी का हुआ था, तो उसके टायर की दुकान थी नीचे, उसका ही मकान था टोटल, उस पर किराए पर अपना सेंटर था। टायर की दुकान में कोई ने आग लगा दी और आग लगी तो हमारा चारों मंजिल सेंटर सहित सब जल गया। क्या क्वेश्चन इधर उधर, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, हमारे बाबा के सेंटर को आग लग गई, कोई ने बचाया नहीं, बाबा ने भी रक्षा नहीं की, बाबा का ही सेंटर जल गया, बाकी क्या है। अब ये बातें इतना सारा उड़ी, बाबा यहाँ आए थे, आए तीन चार दिन के बाद अव्यक्त बाबा। बाबा को आकर के बहनों को ने सुनाया कुछ, दादा बाबा ऐसे ऐसे हुआ है सेंटर पर। बाबा बड़ा मुस्कराया, मुस्कराते कहता बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। फिर बाबा ने खोला उसको, क्यों अच्छा हुआ, दादी की उम्र बड़ी हो गई थी जो वहां रहती थी, वो चौथी मंजिल में लिफ्ट थी नहीं, चढ़ना पड़ता था, उतरना पड़ता था, नीचे मकान नहीं मिलता था, ढूंढने से भी नहीं मिलता था। आग लगते ही गवर्नमेंट ने फट से पहले सेंटर के लिए मकान दे दिया, नीचे का मकान मिल गया। अब भाई बहनों के अंदर इतना प्यार, इतना उमड़ा, हमारी दादी का सेंटर इतना अच्छा सेंटर जल गया, अरे इतने सारे साधन जितने थे उसके कई गुना सब सेंटर्स पर सबने भर दिया करके। इंश्योरेंस था उसका, पूरा पैसा आ गया, क्लेम किया वो पूरा, वो भी आ गया। अब उस समय का दृश्य तो बड़ा दर्दनाक है, सहनीय नहीं है, असहनीय दर्द है, कहेंगे बाबा का सेंटर। लेकिन बाबा को कभी भी ये नहीं दिखाई देता है ये नुकसान हो रहा है कलयुग के अंदर, ये तो होना ही है, सब चीजों में होना है। बड़े ही सरलता से मुस्कुराते हुए कहा सब अच्छा 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 अच्छा। कभी बाबा के चेहरे पर ऐसा देखा है कि टेंशन आ गया हो, कोई बात सुनाई गई हो, कोई ने शरीर छोड़ दिया हो, बाबा कहे हाँ ऐसा हो गया। मैंने तो कभी बाबा के अव्यक्त बाबा के पार्ट में भी ऐसा नहीं देखा जो बाबा के चेहरे पर कोई लाइनें आ जाएं, देखा है कभी किसी ने, बहुत मुस्कराते हुए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जानता सब कुछ है, देख रहा है, साक्षी दृष्टा है, इस समय भी देख रहा है। कितने बच्चों के अंदर हलचल है चारों तरफ, बाबा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या होगा, यज्ञ का कोई धनी नहीं है, अभी कोई पूछने वाला नहीं है। अरे धनी ऊपर बैठा है, गई नहीं गया, और उसको भूल करके लोग अभी साकार के धनी को ढूंढ रहे हैं। हमेशा बाबा ने कहा है जब मकान तैयार हो जाता है, छत तैयार हो जाती, पिल्लर खींचे जाते हैं, पिल्लर पर थोड़ी रहती है छत। अब ये आधार थे, पिल्लर्स थे, इतनी शक्तिशाली छत हो गई है तो पिल्लर तो निकालेगा ना बाबा, निकल गए सब पिल्लर्स, कोई आधार नहीं रखा अभी। जिसने एक बाबा को पहचाना है वो बहुत धैर्यता से, बड़ी शांति से, बड़ी सरलता से जीवन व्यतीत कर रहा है, और जिसने बाबा में पूरा निश्चय नहीं रखा है उसके हजार प्रश्न उठते रहते, ये हुआ ऐसा चला वैसा चला। बाबा कहते इसको पहचान ही नहीं है, भगवान में निश्चय नहीं है। बाबा का अपना ये यज्ञ है, वो यज्ञ का रक्षक है, यज्ञ की संपन्नता उसके हाथ में है। मैं एक दृश्य आपको बाबा का सुनाता हूँ, अव्यक्त बाबा का। बहुत सारे पेपर्स यज्ञ के आगे आ रहे थे, कई बातें सरकार की थी, इनकम टैक्स की थी, बहुत सारी बातें थी, कभी कभी बहुत विरोध होता दिखाई देता ना, जैसे कुछ दिन पहले विरोध होने लगा, कोई यहाँ आएगा नहीं, ये होगा वो होगा, वीआईपी जाना बंद कर दिया, ऐसा ही एक सीन था। तो बाबा को बुलाया गया, बाबा ओम शांति भवन में आए, और जब ओम शांति भवन में आए तो हम सब तो, हमारा तो टाइप करने का है, उस समय कंप्यूटर मेरे पास आ गया, तो मैं कंप्यूटर लेके बैठा था सामने ही, रिकॉर्डिंग भी हो रही थी, टाइप भी हो रही थी, कहीं कोई लिख रहे थे, और बाबा ने मुरली चलाते चलाते ऐसे ऐसे दृष्टि दी, पहले मेरी तरफ ऐसे देखा, टाइप बंद कर दो, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। पूरी सभा में सन्नाटा हो गया, क्या हो गया अचानक, सब कुछ बंद करा दिया, डायरी बंद करो, टाइप करना बंद करो, लिखना बंद करो। फिर जो बड़े थे जब उनको कहा इधर आओ, सब आओ सामने। उसमें हमारे बड़े भाई बड़ी दादियां सब आई सामने बैठी, क्या चल रहा है। सबने अपनी अपनी बातें सुनाना शुरू किया, बाबा ये पेपर ऐसी बातें ऐसी सुनता रहा बहुत। वो शायद एक पोज है ना दादी का, यहाँ पर एक पोज है, दादी भी ऐसे है, बाबा ऐसा बैठा था टांग पर टांग चढ़ा के, जैसे बेगमपुर का बादशाह, बेफिक्र बादशाह। और बाद में मुस्कुराते हुए कहता है, बच्ची जो सवेरा आने वाला है उस सवेरे को कोई रोक सकता है? बहुत सरल शब्दों में उत्तर दिया, जिस सतयुग की दुनिया की स्थापना के लिए आप निमित्त बने हो, क्या ये विघ्न ये रुकावटें आपके उस स्थापना के कार्य को रोक सकते हैं? बातें आती हैं, साइड सीन आती हैं, इनकी कोई परवाह नहीं करो, कोई चिंता नहीं करो। इतना सरलता से, इतनी प्यार से बाबा ने बहनों के अंदर, दादियों के अंदर इतना बल भर दिया। उस समय वो दृश्य बहुत वंडरफुल दृश्य था। कई दृश्य ऐसे आते हैं जो लगता है कैसे सहन होगा, कैसे सामना करेंगे, ये पेपर ये पेपर ये बातें, अरे सब कुछ हो जाए। धैर्यता रखो, धैर्यता रखो। आज गुलजार दादी की विशेषता देखो, एक बार बाबा ने कहा था, इस बच्ची के रथ को मैंने क्यों चुना है? बहुत सारी दादियां बहुत संदेशियां थी, संतरी दादी हमारी सबसे फेवरेट संदेशी बाबा की, कई बार बाबा के होते भी अलमाइटी की पधरावनी उनमें होती थी। शील दादी हमारी हर परिस्थिति में, हर पेपर में, छोटी छोटी बात में उनको ट्रांस में भेजा जाता था। लेकिन गुलजार दादी को ही बाबा ने लिया, और इतना समय बाबा ने उस रथ से सेवा ली। तो बाबा ने उसकी दो विशेषताएं बताई, याद होगा आप लोगों को। बाबा ने कहा, बच्ची ने अपने संकल्पों को बहुत शांत रखा, धैर्यवत रखा। कहीं पर भी इनके संकल्पों में हलचल देखी, कुछ भी उनको बोलो, कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा पेपर आ जाए, लेकिन धैर्यता, संकल्प में हलचल नहीं आई। बहुत अचल, संकल्प की शक्ति को, ये ब्रेन की शक्ति है। कई लोग छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देते हैं, इतना सोच लेते हैं, जो रात भर नींद नहीं आती, चढ़ जाता दिमाग के अंदर वही वही संकल्प, ऐसे 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 ऐसे, एक लाइन पूरी होती है और वो बंद करते हैं, फिर रोकते हैं, फिर वही शुरू हो जाता है सर्किल में। संकल्पों की उत्पत्ति हमारी सारी एनर्जी को नष्ट करती है। जितने संकल्प फास्ट आप करोगे, उतना आपकी आंतरिक एनर्जी नष्ट होगी। कितना भी आप रट के आओ, क्लास कराना है मुझे, कोई टॉपिक पर भाषण करना, रट के आ जाओ, संकल्प में अगर धैर्यता नहीं है, शांति नहीं है, आप आएंगे और फां हो जाएंगे, भूल जाएंगे सब कुछ। अगर शांति से पढ़ लिया है, देख लिया है, चिंतन कर लिया है, बहुत निश्चिंत होकर के बाबा की याद में बैठ जाओ, बाबा आपसे अपने आप सब बुलवा देगा, सब अंदर से आ जाएगा, ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है। तो आजकल सबसे बड़ी बीमारी पता क्या है? सोचने की बीमारी। इसलिए मेरे को एक बहुत अच्छा स्लोगन लगता है, जब कभी गाड़ी से जाते हैं ना, तो ट्रक के पीछे एक स्लोगन लिखा होता है, सोचने के पहले सोच लो तुम्हारे साथ क्या जाएगा। मैं कह, कितनी बुद्धि चलाई होगी लिखने वाले ने, सोचने के पहले सोच लो। सोचने के पहले भी सोचने की जरूरत है कि मैं जो सोच रहा हूं इसका क्या अर्थ है। ऐसे तो नहीं बेकार का सोच रहा हूं, कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा है, कुछ होने वाला ही नहीं, और सोच रहा हूं मैं। तो सोच पर हमारा बहुत ध्यान चाहिए। संकल्प एक बहुत बड़ी एनर्जी है, बहुत बड़ी शक्ति है। तो दादी ने अपने संकल्पों को किसी भी परिस्थिति में हलचल में नहीं लाया, इसलिए उनका ब्रेन जो है, भगवान ने 14-14 घंटा रात रात भर यूज किया, ब्रेन बहुत शांत। शिव बाबा ने जो इतनी अच्छी शक्तिशाली मुरलियां चलाई हैं, उसका कारण बना है दादी का ब्रेन। ब्रह्मा बाबा का ब्रेन तो अलग था, उनके अंदर तो बहुत सारी बातें अनुभवों की भरी हुई थी, और दादी तो बहुत इनोसेंट, कोई भी बात है ही नहीं अंदर, तब तो इतनी शक्तिशाली मुरलियां चली हैं। आज देखो अव्यक्त मुरलियां पढ़ो, क्या टॉपिक पर दादी कोई पढ़ी लिखी है क्या? लौकिक में कितनी पढ़ाई किया दादी ने, 9th में तो समर्पित हो गई आकर के, 9 साल की जब थी, तो आप समझ सकते हो कि बाबा कैसे यूज करता, कैसे यूज किया, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ धैर्यता से संकल्पों को शांत रखा। और दूसरा, कितना भी आप बुलवाओ, पांच शब्द बोलने होंगे तो एक शब्द में जवाब देंगी, कभी भी बोल भी बोल की एनर्जी को नष्ट नहीं किया। ये बहुत बड़ी एनर्जी है बाबा, कई बार हम सबका ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे बोल को कंट्रोल में रखो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जो जरूरी है वही बोलो, है सबका ध्यान। चुप रहना एक बहुत बड़ी विशेषता है, लेकिन कई बार चुप्पी नुकसान भी करती है। कहते बड़ा चुप रहता है, अंदर अंदर पता नहीं क्या सोचता रहता है। बोलना चाहिए, बोलने की मना नहीं है, लेकिन कब बोलना है, कहां बोलना है, किसके साथ बोलना है, सोचो समझो फिर बोलो। ज्ञानी और अज्ञानी में बहुत बड़ा अंतर बाबा बताता है, एक ही अंतर है सिर्फ। क्या अंतर है? ज्ञानी बोलने के पहले सोचता है, मैं बोल रहा हूं इसकी रिजल्ट क्या होगी, और अज्ञानी बोलने के बाद सोचता है, अरे बोल तो दिया, अब पता नहीं क्या होगा। हम सब बाबा के ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हैं। हम बहुत ध्यान दें, जो बोल रहे हैं उस पर हमारा कंट्रोल हो। बोलो जरूर, जब बोलना है तब बोलो, समय देखो, स्थान देखो, व्यक्ति की मूड देखो, नहीं तो टकराव पैदा हो जाएगा और फिर आपको सहन करना पड़ेगा। कुछ न कुछ बोलेगा, बड़ा है, अनुभवी है, पुराना है, आप डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रहे हो, बोल देगा, जरूर बोलेगा। और आपने नहीं सहन कह पाया तो डिपार्टमेंट चेंज करते रहो, इधर से इधर, इधर से इधर। कई लोग हैं एक डिपार्टमेंट में ठहरते ही नहीं, एक साल दो साल सेवा करेंगे, भाई ये तो ऐसा है, यहाँ ऐसा है, ये ऐसा है, मुझे ऐसा बोलता है। बाबा कहता कितनी भी डिपार्टमेंट चेंज करो, जहां रहना है वहां सहन करना ही पड़ेगा। इधर से निकलोगे उधर हिसाब किताब शुरू हो जाएगा, जहां जाओगे वहां ही आएगा। इसलिए क्यों नहीं हम जहां रह रहे हैं वहां पर सहन करके, सुन करके, समा करके, नम्रता के साथ, सम्मान दे करके आगे बढ़ जाएं। थोड़ा तो चुप होकर के, शांत होकर के हर एक बात को धैर्यता से सुनो। धीरज धर मनुआ, मनुआ धीरज धर, सब अच्छे होगा, सब अच्छा हो जाता है। कोई गांठ बांध करके नहीं रखता, कोई कोई होंगे शायद बात को गांठ बांध लेते हों, और जो बात को गांठ बांध लेगा वो तो दुखी होता रहेगा, खुद परेशान होगा, मुझे क्या करना है। मान लो आपको कोई बात, आपके बारे में कोई नहीं सोचा, ईर्ष्या के बस, बहम के बस, बहम भी एक बहुत नुकसान है। तीन बातें बता रहा था ना, अहम, ईर्ष्या और बहम। बहम महम माना समझ रहे हो ना, अनुमान। अरे जहां शक की बीमारी है ना वहां शांति रहती नहीं। शक एक बहुत बड़ी बीमारी है, शक की बीमारी से कई घर फिट जाते हैं। इसलिए हम सब ध्यान दें, कभी भी बहम से कोई को इस नजर से नहीं देखो, ये व्यक्ति ऐसा है, जो होगा जो करेगा वो पाएगा, मैं क्यों सोचूं, सोच सोच करके मैं अपने चिंतन को व्यर्थ क्यों करूं। इसलिए ध्यान देना, बहुत कोई भी कार्य आता है, कोई भी बात आती है, कोई बड़े से बड़ा कलंक भी लगा लेता है, तुरंत जवाब नहीं देना, धैर्यता से क्या बोलना है, क्या जवाब देना है, सोच समझ करके समय पर जरूर कहो, मना नहीं है, लेकिन तुरंत करोगे तो टकराव पैदा हो जाएगा। इसलिए धैर्यता का गुण जो है बहुत मदद करता है संगठन में, बात आती है खत्म हो जाती है। कई हैं जो बात को तिल को ताड़ बनाना जानते हैं, छोटी सी बात और सोच सोच करके वर्णन करके इधर उधर सुना करके उसको पहाड़ बना देते, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, इधर हल नहीं मिलेगा उधर जाएंगे, 10 लोगों के पास धक्के खाते हैं, और 10 लोगों के पास जाओगे तो क्या होगा, 10 प्रकार की बातें मिल जाएंगी, फिर आप सोचते रहो भी क्या करूं। इसलिए क्यों नहीं बाबा के पास जाओ, अगर कोई बात ऐसी लगती है मेरे सहन के बाहर की है। कई कई पता क्या कहते हैं बहने हमारी, कई कई लिखते, कब तक मैं सहन करूंगी, न जब तक मरना तब तक सहना है, कब तक मैं सहन करूंगी। अरे डायरेक्शन बाबा का है, भगवान के नाम पर हम सहन कर रहे हैं, उससे हमारा प्यार है इसलिए हम सहन कर रहे हैं, कोई के दबाव में थोड़ी सहन कर रहे हैं। अगर सहन नहीं करेंगे, टकराव पैदा होगा, टकराव होगा तो हमारे बाबा का नाम बदनाम होगा, यज्ञ का नाम बदनाम होगा। कहेंगे यही इनका ब्रह्म कुमारियों का ज्ञान है, ज्ञान तो बड़ा ऊंचा देती है, हम शांति की राज्य स्थापन कर रहे हैं, सुख का राज्य स्थापन कर रहे हैं और खुद अशांत रहते हैं, खुद टकराव में आते हैं। सहन तो करना पड़ेगा ना, किसके डायरेक्शन से सहन करना? अरे बच्चे कुछ भी हो, मरो मिटो, सहन करो, जहां रहो वहां सहन करो। बहुत धैर्यता से, शांति से बात को सुनो, समझो, सहन कर लो, संभालो, एक न एक दिन वो रियलाइज करेगी आत्मा सामने वाली और वो बात आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उसी समय जवाब दे दिया तो मैं देखता हूं फिर वो सदा के लिए वैरी बन जाते हैं, ये मेरा को जानती नहीं है, ये मेरा सम्मान नहीं करती, ये मेरी बात को कट करती है, बस इस कारण से ही टकराव पैदा हो रहे हैं। और जो बहनें समझ गई ना हमारी दीदी की ये आदत है, बड़ों की हमारी ये आदत है, वो तो ऐसा कहेंगी ही, वो बड़ा मुस्कुरा करके कहती ठीक है दीदी, ठीक है हम चेंज कर लेंगे, आगे के लिए ध्यान रखेंगे। बड़ा अच्छा शब्द यूज करते, आगे के लिए ध्यान रखेंगे, बात खत्म हो गई, सॉरी कर लिया। दादी पता क्या कहती थी, बहनों को क्लास जब कराती थी तो कहती थी अरे सॉरी करने में तो साड़ी थोड़ी खराब हो जाएगी, हार मान लिया हारमनी हो जाएगी, क्यों जिद कर रहे हो, क्यों कि सिद्ध कर रहे हो, जिद सिद्ध कर रहे हो तो जरूर कुछ कमी कमजोरी है ना, इसलिए कभी भी जिद नहीं करो, सिद्ध नहीं करो, जो बात कह रहे हैं सुन लो, संभालो, नहीं है ठीक है। हाँ, दादी जानकी हमें एक बात बहुत अच्छी कहती थी, मम्मा की बात है वो, शिक्षाएं गलत नहीं होती, शिक्षाएं कोई दे रहा है मान लो मेरी गलती नहीं है और मुझे कहा जा रहा है, तो दादी हमेशा अंडरलाइन कराती थी उस शिक्षा को संभाल करके अपने पास रखो, समय पर काम आएगी, आज नहीं है मेरे पास कमी कमजोरी, अच्छा हमारे लिए नहीं है, हमको शिक्षा मिली है तो कभी किसी के काम आ जाएगी, शिक्षा तो एक अच्छी चीज है ना। इसलिए अगर कोई बात कहता है लगता है ये मेरे को क्यों शिक्षा दे रहा है, तो यहां पर थोड़ा सा बहुत धैर्यता से उस शिक्षा को शिक्षा के रूप में समझ करके अपने पास संभाल के रखो, समय पर सब ठीक हो जाएगा। समय पर वो शिक्षाएं बहुत मदद करती हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हम लोगों को मिली बड़ों से, समय पर समय मिली हैं, लेकिन ऐसा लगा कि उन शिक्षाओं ने हमें हमारी रक्षा की है और हमको आगे बढ़ाया है, बहुत शिक्षाएं रक्षा करती हैं। कभी भी ध्यान दिया, एक बार मैंने सुनाया है आप लोगों को, दीदी ने एक बार मेरे को कहा इससे बुला के ध्यान देना, यहां पर बहनें रहती हैं, छिप छिप करके बात नहीं करना, ये दाल में काला है, छिप के क्यों बात करते हो, बात करने तो सामने करो ना सबके। बहुत प्यार से बुला के इशारा किया, कोई से भी ऐसे क्यों बात करे, हमारी प्योरिटी की स्टेजेज हैं, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी की चैलेंज है कि हम इस व्रत को दृढ़ता से पालन करेंगे। अब कोई भी जरा इशारा कर देता है मूड खराब हो गया, बस मेरे को कहा जाता है, मैं गलत थोड़ी हूं, सिद्ध करेंगे, जिद करेंगे, सब सरलता सहनशीलता पता नहीं कहां चली जाएगी, कलंक लगेंगे, कलंगी धर बन जाओगे, लगने दो। लेकिन अगर मान लो कुछ है तो दृढ़ता के साथ प्रतिज्ञा करो कि इस कमी को मैं समाप्त करूं, इस मर्यादा को मैं पक्का कर लूं दृढ़ता से। तो इसलिए धैर्यता से कोई भी बात कही जाती है उसको सुनना, उसको समाना, संकल्प को धैर्यवत बनाना, वाणी को बहुत कंट्रोल में रखना, मैं समझता हूं ये हमारी संगठन की सफलता का बड़ा अच्छा साधन है। संगठन में बहुत अच्छी तरह से हम सब निर्विघ्न रह सकते हैं, लेकिन ये गुण अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो आज बाबा से ऐसी मीठी मीठी रूह रिहान करना कि बाबा मुझे ये शक्ति, ये बहुत बड़ी शक्ति है। देखो आज माता है ना, लौकिक में माँ जन्म देने वाली, बच्चा अगर कुछ भी गंदगी कर दे, टट्टी करे, कुछ भी कर दे, सारा सहन करती है, उसको बुखार हो जाए, उसकी तबीयत खराब हो जाए, अपनी नींद फिटा देती है, कितनी मेहनत करती है। बाबा कहता देखो एक स्नेह, एक संबंध कितना सहन कराता है। हम बाबा के नाम पर अगर थोड़ा बहुत सहन करते तो हम सहन क्या कर रहे हैं, क्या सहन कर रहे हैं, दुनिया की भेंट में तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बाबा ने इतना आराम से रखा है, जो मिला है संतुष्ट रहो, सब कुछ बाबा ने दिया है, भरपूर किया है। तो हम सब बाबा के बच्चे इस धैर्यता के गुण को धारण करें, संकल्प को धैर्यवत बनाओ, न हरी करो न वरी करो और न चटपटा खाओ, करी करो। करी किसी को कहते हैं ना, जो सब्जी होती है उसमें खूब मिर्च मसाला डाल करके खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा। इसलिए हरी माना जल्दी जल्दी नहीं करो, और वरी माना किसी चीज की चिंता नहीं करो, और करी माना थोड़ा सा हल्का सात्विक भोजन करो, ऐसा घनिष्ठ भोजन नहीं करो। तो अगर इन तीन बातों को हम ध्यान पर रखेंगे तो इस ब्राह्मण जीवन में मन की स्थिति बहुत अच्छी एकाग्र रहती है, मन मनाभाव होना बहुत सहज है। इसलिए इस परिवार में सहन करना, धैर्यता से चलना, समा लेना, सम्मान देना, बहुत सारे गुण एक के साथ अनेक आ जाते हैं। मैं तो कहता हूँ इन गुणों की एक बड़ी माला बनाओ, जहाँ धैर्यता है वहाँ शांति होगी, जहाँ शांति है वहाँ सुख होगा, जहाँ सुख और शांति है वहाँ प्रेम होगा, मधुर वाणी होगी, संतुष्टता आ जाएगी। अरे एक गुण अनेक गुणों को अपने आप ले आएगा। तो हम सब एक एक गुण को ध्यान दें, गुण मूर्त बन जाएं, बाबा हमारी गुणों से गुणों की माला पहना रहा है, तो संगम पर अच्छी तरह से इन गुणों से हम सबको संपन्न बनना है। ठीक है, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो पूछो, नहीं तो हम आधा घंटा योग करेंगे। कोई को पूछना है कुछ? कोई बोलना है सुधीर भाई? ब्लैंक है। कोई भाई को, कोई बहन को कुछ पूछना है, कोई प्रश्न? पूछो पूछो। अच्छा
भाई साहब, हम जब फरिश्ता स्वरूप की स्थिति का अभ्यास करते हैं तो बाबा ने बोला कि फरिश्ता बनके मनसा सेवा करो, तो जब हम साकार में शरीर फरिश्ता स्वरूप का धारण करके सेवा करते हैं तो सबसे पहले संबंध संपर्क वाले सामने आते हैं, तो उनकी सेवा करने में कोई मतलब विधि है क्या? क्योंकि उसमें काफी समय निकल जाता है, तो ऐसी कोई विधि है जिससे मना व्यर्थ में भी ना जाए या अटैचमेंट में भी ना आवे या सेवा भी हो?
वैसे बात अच्छी है, ये बात सबके अंदर होगी। जब हम मनसा सेवा की बात करते हैं तो जो हमारे नजदीक के होते हैं, कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, वो खास कहते हैं फोन करके, भाई जी मेरे लिए योग करना। और करते हैं हम लोग, करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे नजदीक हैं, हमारे सेवा साथी हैं, संबंध है, तो ऐसा नहीं, गलत है, करना चाहिए। अब दादी के लिए हम करते हैं ना, किसी के लिए भी करते हैं, भाई इनकी तबीयत ठीक रहे, इनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, बीमारी ठीक रहे, कई प्रकार के संकल्प लेकर के हम योग करते हैं, और करना चाहिए। लेकिन एक बेहद में रह करके करो, बाबा बेहद की भावना हमारे अंदर पैदा करता है, अपने आप उनको भी मिलेगा, लेकिन एक संकल्प उनके लिए उठे, ज्यादा नहीं, कि इनके प्रति भी हमारा योग है, ये आत्माएं स्वस्थ रहें, निर्विघ्न रहें, इनकी प्रॉब्लम खत्म हो, संकल्प है। लेकिन बार बार उसका ध्यान करने की जरूरत नहीं। बाबा एक बहुत अच्छा मिसाल देते हैं, जैसे कोई आपका संबंधी बीमार होता है तो उस संबंधी को आप हॉस्पिटल में ले जाते हैं, आपने डॉक्टर के हवाले कर दिया, फिर डॉक्टर क्या कहता है, अभी आप बाहर रहो, लिख करके मुझे दे दो, कि कुछ भी होगा तो कोई इतराज नहीं है, लेकिन आप भगवान का ध्यान करो, ये काम मेरा है, मैं करूंगा। यही विधि है हमारे इस मनसा सेवा में। अगर कोई ऐसे हैं जिनकी प्रॉब्लम है संबंधों में, तो जब भी मनसा सेवा करते हैं ना, तो फरिश्ते रूप से सेवा करना वो अलग है, लेकिन अगर हम उनके प्रति शुभ भावनाएं रखते हैं, शुभ संकल्प करते हैं, संबंध हैं, तो उनको बाबा के हवाले कर दो, बाबा अभी आप जो भी करना है इनका इलाज करो, और आप बाबा को याद करो, आप बाबा के प्यार में बैठ जाओ, आपकी शक्तियां तो चारों तरफ फैलेंगी जब बाबा की याद में बैठेंगे। बार बार उस आत्मा को थोड़ी याद करेंगे जिसको आप बाबा के हवाले कर दिया, अब बाबा जाने वो जाने, तो एक संकल्प तो जरूर आएगा, जिसके लिए सेवा में बैठे हो उसको बाबा के हवाले करो, बाबा आप इसको जैसे चाहे इसको ठीक करो, जो ऑपरेशन करना है आप करो, मैं तो आपको याद करता हूँ बस। तो ऐसे मनसा सेवा का अभ्यास करना चाहिए। और कुछ पूछना है? बहुत पीछे आ गया हो, पीछे से भाई पूछ रहे हैं। माइक ले लो, सब सुनेंगे ना।
ओम शांति भाई साहब, मनसा सेवा में विकल्प आते तो उन्हें कैसा रोके भाई साहब आपसे?
ऐसा है भैया, विकल्प अगर आते हैं तो मनसा सेवा तो हो ही नहीं सकती। मनसा सेवा के लिए तो विधि यही है कि शुभ संकल्प ही आने चाहिए।
भाई साहब, मन मनसा सेवा करते समय यदि मन में विकल्प आते हैं तो उन्हें कैसा रोका जाए?
पहले तो हम सबको ये ध्यान रहता, नहीं प्रश्न पूछने का ठीक है, बात इसकी जो है अंदर भाव अलग है, पूछ अलग रहा है, क्योंकि कई बार हम अपने मन के संकल्पों पर ध्यान नहीं देते और मनसा सेवा करने बैठ जाते हैं। पहले हमें अपने मन के संकल्पों को शक्तिशाली बनाना है, शुभ भावना से संपन्न करना है, जो व्यर्थ और नेगेटिव इधर उधर के विकल्प चल रहे हैं उनको ज्ञान योग से मोड़ना है। बाबा ने हमें इतना अच्छा कहते हैं, अगर तन शक्तिशाली है तो तन से सेवा कर सकते हैं, मन शक्तिशाली है तो मन से सेवा कर सकते हैं। तो मन को सशक्त बनाने के लिए पहले मन को अच्छे अच्छे संकल्प देने की कला चाहिए, बहुत शुभ भावनाएं चाहिए, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब आत्माएं बाबा से अपना गति सदगति मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कर लें, ऐसी शुभ भावना रख करके जो संकल्प किसी के प्रति हैं भी व्यर्थ नेगेटिव उनको मोड़ो, पहले ही मोड़ करके अपने संकल्पों को बहुत शुद्ध शक्तिशाली बनाओ, हल्का बना लो, बहुत हल्के संकल्प से बाबा को ऐसे याद करो तो वो मनसा अपने आप वहां तक पहुंचेगी। लेकिन अगर कोई इधर उधर के संकल्पों में युद्ध चल रहा है तो मनसा सेवा के लायक नहीं है, इसलिए मन के संकल्पों पर बहुत ध्यान देना है। इसलिए बाबा ने हम सबको कहा है, बच्चे अमृत वेले से रात्रि तक मन को किसी बाउंड्री के अंदर रखो, ये बहुत भागने वाला है। इस पर कभी कभी माया जब सवारी करती है ना, कहते हैं मन घोड़ा है, और घोड़े पर जब माया बैठ जाती है ना तो लगाम उसके हाथ में चली जाती है, इधर के विकल्प उधर के संकल्प उसको बहुत परेशान करते हैं। इसलिए पहले तो श्रीमत की लगाम टाइट रखो कि श्रीमत के अनुकूल ही संकल्प रचने हैं। रचना हमारे हाथ में, कैसे रचते हैं उसका बहुत बड़ा व्याख्या है, बहुत विस्तार है। संग ठीक नहीं है तो संकल्प खराब हो जाएंगे, अध्ययन ठीक नहीं है, पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं है, सारा दिन मोबाइल में इधर उधर की बातें देख रहे हो सुन रहे हो, वो संकल्पों को खराब कर देगा। भोजन आपका ठीक नहीं है, तामसिक है राजसिक है बहुत तला गला है, वो आपके संकल्पों को दूषित कर देगा। बहुत सारे परहेज है, और वो जब परहेज हम सब प्रकार की करते हैं तो मन अपने आप निर्मल शुद्ध शांत, फिर हम योग करते हैं तब मनसा सेवा हो जाती है। मनसा सेवा के लिए वास्तव में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं ना, हम अमेरिका में घूम रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे हैं, वास्तव में इसकी कोई जरूरत नहीं है। पावरफुल योग में ही जो संकल्प आपके अंदर उठेगा वहां पर वो संकल्प काम करेंगे, वहां संकल्प पहुंच जाएंगे आपके। लेकिन पहले आप संकल्पों को बहुत शक्तिशाली बनाओ। जैसे कहते हैं बहुत बड़ा बल्ब अगर जल रहा है तो बल्ब को कोई बाउंड्री रोक नहीं सकती, वो अपने आप उसकी लाइट जिधर से भी जा सकेगी जाएगी। अब सूर्य निकलता है, कितने भी बादल आते हैं कहीं ना कहीं जरा भी बादल हटे किरणें आ जाती हैं, तो हम मास्टर ज्ञान सूर्य बन करके ऊंची स्थिति पर रहें तो वो वाइब्रेशन वो संकल्प अपने आप चारों तरफ फैलेंगे।
जी भाई साहब, संस्कारों को परिवर्तन करने का कोई फार्मूला है भाई साहब? शॉर्टकट वाला चाहिए, 2020 चल रहा है अभी। 2020 भी बंद है, उससे फास्ट वाला कोई
अभी वो भी बंद हो गया। ऐसा है कि जितना शुद्ध संकल्प धारण करते हैं ना वो संकल्प चेंज हो जाते हैं। वास्तव में संस्कार कोई जड़ से खत्म हो गए समाप्त हो गए, हमारी समाप्ति का अलग प्रकार का लक्ष्य है। वो लक्ष्य है परिवर्तन। जो हमारे संस्कार बार बार संकल्पों विकल्पों में आ रहे हैं, हम केवल संकल्पों पर ध्यान दें। संकल्पों पर जिसने पहरा दिया है ना, उसके संस्कार धीरे धीरे अपने आप बदल जाएंगे। इसलिए संकल्पों को कुछ न कुछ अच्छा चिंतन देते चलो। चिंतन तो दे सकते हैं, रोज सवेरे आज इतना अच्छा वरदान मिला, सम्मान मिला, स्लोगन मिला, कोई एक बात तो मन के संकल्पों को दे दो। वो संकल्प जब चलते रहेंगे तो जो संस्कार है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कोई लेजर किरणें ऐसी है, जाओ डाल दोगे तो जल जाएगा। कई ऐसे योग कराते हैं ना, मैं योग में लेजर किरणें डाल रही हूं, वो जल रहा है। अब कौन सी चीज है जलेगी, वो कौन सी किरणें हैं जो जला देंगी? हमारा पावरफुल संकल्प, शक्तिशाली संकल्प उस संस्कार को चेंज कर देगा। वो संस्कार जो बार बार इमर्ज होता है ना, जब कोई व्यक्ति महसूस करता है दिल से। मैं एक मिसाल बताता हूं, जैसे आप लोगों ने सबने कहानियां पढ़ी हैं, वाल्मीकि का संस्कार कैसे चेंज हुआ? बहुत डाकू था ना, कितना मारता था, लूटता था, ये बहुत कड़े संस्कार थे। और कड़े संस्कारों को चेंज करने के लिए उसने क्या किया, कैसे हुआ? पहले उसको समझ मिली, पहले समझ दी, सन्यासियों को पकड़ा तो उन्होंने बताया किसके लिए तुम कर रहा है, भाई पूछ तो आओ, इसका हिसाब किताब जो बनेगा वो किसके हाथ में है। जब उसने पूछा तो उसको धक से महसूस हुआ, नहीं मुझे नहीं करना चाहिए। अब महसूस तो कर लिया, फिर पूछा अब मैं चेंज कैसे करूं, तो उन्होंने राय दिया कि तुम बैठ जा तपस्या में, करो तपस्या, अपने आप संस्कार चेंज हो जाएंगे। अब उसने ऐसी तपस्या की जो कहते हैं उसके शरीर के ऊपर बाल बना लिए दीमकों ने, छोटे छोटे घर बना लिए। और जब घर बन लिया, इतना सहन किया, इतने एकदम खाना पीना छोड़ के बैठ गया, तब भगवान प्रसन्न होके कहते हैं मांग वरदान क्या चाहिए, तो उसको इतना बुद्धि का वरदान मिला, तो इतनी अच्छी रामायण लिख डाली, बुद्धिमान बन गया, संस्कार चेंज हो गए। अब संस्कार चेंज करने के लिए हम लोग कहते तो हैं, मुरलियां पढ़ते रहते हैं, योग करते रहते हैं, लेकिन एक दृढ़ता का जो संकल्प है उसमें कमजोरी है। 60 रास्ता यही है, संकल्प कर लो मुझे नहीं करना है बस। दृढ़ता जहां आ जाएगी ना, वहां सब परिवर्तन हो जाए। कुछ भी हो जाए, ये संस्कार को मुझे खत्म करना है, मुझे बार बार इसको याद नहीं करना है, उसको रिवाइज नहीं करना है। बार बार रिवाइज करोगे तो पक्का होता जाएगा। इसलिए कोई भी बातें हैं, दृढ़ता का संकल्प करो, उसको चेंज करो, संकल्प में ही चेंज कर दो, संस्कार चेंज हो जाएंगे। अभी सुधीर भाई को भी कुछ आ रहा है।
वो प्रसन्न से प्रसन्न आया है एक्चुअल में। आपने कहा कि भगवान प्रसन्न हुए, तो उस प्रसन्नता का थोड़ा सा वर्णन कर दो, कैसी होती?
भाई प्रसन्नता का वर्णन क्या करें, आप लोग जानते हो ना, भगवान हमारे पर प्रसन्न हुआ है ना, नहीं हुआ है? आज प्रसन्न नहीं होता तो हम लोग कहाँ पड़े हुए थे, किधर धक्के खा रहे थे, और आज ये युवा लोग क्या करते होते है? कैसी गृहस्थी होती, दो चार बच्चों के बाप होते और वही झंझट, वही लफड़ा, वही तेरा मेरा ये वो, मरना जीना क्या लगा पड़ा दुनिया के अंदर। अगर आज की दुनिया की हालत देखो ना, जो बाबा कहता था बच्चे दुख के पहाड़ गिरेंगे, सचमुच दुख के पहाड़ गिर रहे हैं। अचानक लोग मौत, जिस पर इतना फेत, जवान जवान घर के लोग शरीर छोड़ जाते हैं, चले जाते हैं, संबंध देखो। कभी कभी देखो बच्चों को बड़ा किया, माँ बाप ने पाला बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, नौकरी में लाए, और उनको छोड़ करके वानप्रस्थ आश्रम में रख दिया बूढ़े घर में, और खुद मौज कर रहे हैं, उनको पूछते भी नहीं, पानी भी नहीं देते। ऐसी दुखमयी दुनिया से भगवान ने निकाल लिया, उनकी छत्र छाया के नीचे बैठे हैं। न खाने की चिंता है, न कमाने की चिंता है, न बनाने की चिंता है, न कपड़े की चिंता है, न घर की चिंता है, न बिजली की चिंता है। आज एक सेंटर पर बहनों को एसी चलाने में दर्द होती है कि अगर एसी का बिल 5,000 आ गया तो क्या होगा। आज हमारे यहाँ हजारों एसी चल रहे हैं, कोई है चिंता, किसने सोचा है? प्रसन्न चित्त ऐसे भी नहीं होगा तो क्या होगे। इतनी सब भगवान ने छप्पर फाड़ करके प्राप्तियां कराई हैं, और कोई ऐसे ही निराश उदास नेगेटिव संकल्प कर रहा हो तो प्रसन्न नहीं रह सकेगा। बहुत अच्छे शुद्ध संकल्प करो, भगवान आपने मुझे क्या से क्या बना दिया, अपनी पलकों पर बिठा दिया, अपनी छत्र छाया के अंदर अपनी गोदी में बिठाया है, मुझे क्या चाहिए, सब कुछ तो तूने दे दिया, मान शान सम्मान साधन सुविधाएं, जो दुनिया के अंदर कलयुग के अंदर जो असंभव चीजें हैं। कब परसों सुदेश दीदी मेरे पास आके बैठी, कहती मधुबन में तो प्रिंस लाइफ है, प्रिंस लाइफ, प्रिंस भी क्या रहते होंगे ऐसे, ऐसी लाइफ के अंदर हम बैठे तभी प्रसन्न चित नहीं रहेंगे तो कहां रहेंगे। लेकिन इसका कभी कोई विचार नहीं करता। मैं कहता हूं आप जब योग में आओ ना पहले 5 बजे, आप सब लिखो 15 मिनट 20 मिनट अंदर विचार करो कि बाबा मुझे मिला सचमुच क्या क्या मिल गया, कैसी जीवन मिली, कैसी प्राप्तियां हुई, नयन गिले हो जाएंगे, वो दुख वाले गिले नहीं, खुशी में गिले हो जाएंगे, प्रसन्न चित आत्मा अंदर से प्रफुल्लित हो जाएगी। तो ये है मैं समझता हूँ प्रसन्न चित रहने का राज। स्थूल सूक्ष्म कोई कमी नहीं, सब भंडारे भंडारी भरपूर बाबा ने किया, कोई को कोई चिंतन नहीं, कोई चिंता नहीं। लेकिन कभी कभी हम लोग दूसरों से जब भेंट करते हैं ना, तब हमारी प्रसन्नता छिन जाती है, गुम हो जाती है, इसके पास ही है ना, मेरे पास नहीं। लेकिन मेरे पास जितना है वो बहुत कुछ बाबा ने दिया है, उसको विचार करो ना तो खुशी गायब नहीं होगी, प्रसन्नता नष्ट नहीं होगी। चलो अभी 15 मिनट योग कर लो, ठीक है ना सुधीर भाई। सभी 15 मिनट में तो नींद नहीं आएगी ना, अभी नहीं आएगी। अपने अपने अकाल तख्त पर बैठना, अपने भाग्य का अच्छा चिंतन करो, भगवान और भाग्य, भगवान भाग्य और भावी, क्या भावी है ड्रामा की, जो संगम युग पर भगवान ने इतना श्रेष्ठ भाग्य बना दिया, और भाग्य बनाया ही नहीं लेकिन भाग्य बनाने की कलम हाथ में दे दी, जिसका भी चाहे वो भाग्य बना दे। तो हम सबके हाथों में भाग्य विधाता ने भाग्य बनाने की कलम दी है, ऐसी भाग्यवान आत्माएं संगम पर भगवान ने चुनकर हमारे इस संगठन में हमें बिठाया है। कितने महान हैं, कितने श्रेष्ठ हैं, कितने ऊंचे से ऊंचे हैं, कितनी ऊंची भक्ति की होगी जो भगवान ने मुझे अपना भक्ति का ये फल दिया है। तो आप सब उसी नशे और खुशी के साथ बाबा से दिल की रूह रियान करो।
तेरी याद।